नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का समर्थन किया है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इस पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष 3 सप्ताह से अधिक समय से चल रहा है और इसने विश्वभर में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए भी ये स्थिति चिंता का विषय है, क्योंकि इस संघर्ष के कारण व्यापार मार्ग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति बाधित हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास रसोई गैस के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं।
मैं आपके माध्यम से देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं। हमारी सरकार की कोशिश है कि ईंधन के किसी एक ही स्रोत पर ज्यादा निर्भरता न रहे। सरकार घरेलू गैस सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी बल दे रही है, साथ ही एलपीजी के घरेलू उत्पादन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों पर चर्चा आज भी जारी रही। चर्चा में हिस्सा लेते हुए विधायक संजय अवस्थी ने जहां सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने सीमित साधनों के बावजूद आपदा से प्रभावित हर परिवार को राहत देने का काम किया और विशेष पैकेज जारी किया। विधायक प्रकाश राणा ने कहा कि सरकार ने एक ऐसा बजट पेश किया जिसका आकार पिछले बजट से भी कम है। उन्होंने विधायक निधि के साथ ही अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन में की गई कटौती पर भी सवाल उठाए। विधायक मोहनलाल बरागटा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विपरीत परिस्थितियों में एक बेहतर बजट पेश किया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चर्चा के दौरान विधायक प्रकाश राणा ने सकारात्मक सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और सनसनी फैलाने के प्रयास नहीं होने चाहिए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित आधुनिक प्रणालियों को अपनाने के महत्व पर बल दिया है। आज लोकभवन शिमला में आयोग के अध्यक्ष कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में उनसे मिलने आए अन्य सदस्यों से बातचीत के दौरान राज्यपाल ने ये बात कही। बैठक के दौरान अध्यक्ष ने राज्यपाल को आयोग की वर्तमान गतिविधियों और पहलों से अवगत करवाया। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। वे आज विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के दूसरे चरण के शुभारंभ अवसर पर शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बोल रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिसम्बर 2024 के दौरान आरंभ किए गए टीबी मुक्त भारत अभियान के पहले चरण में हिमाचल ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के करीब 14 लाख से अधिक अति संवेदनशील लोगों की जांच कर 100% लक्ष्य पूरा किया गया है। शांडिल ने कहा कि 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के दूसरे चरण में प्रदेश के 5176 उच्च जोखिम वाले गांवों और शहरी वार्डों को कवर किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि वर्ष 2022 में कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े वायदों और गारंटियों के साथ सत्ता में आई, लेकिन अब जनता पर लगातार आर्थिक बोझ डाल रही है। आज शिमला में उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 40 महीनों में करीब 4,000 करोड़ रुपए जनता से टैक्स के रूप में वसूले हैं और अब नए बढ़े टैक्स के माध्यम से करीब 2,000 करोड़ और निकालने की तैयारी है। बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने बिजली, पानी, राशन, स्टाम्प ड्यूटी और सीमेंट के दाम बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता और हिमाचल में महंगा होने से तस्करी और माफिया तंत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।
पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ाए गए हैं, ये अवांछनीय है, अनवांटेड है और प्रदेश की जनता की कमर तोड़ने का काम कांग्रेस की सरकार ने जो किया है, ये किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया। इसके साथ ही एंट्री टैक्स के माध्यम हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर एक भारी भरकम बोझ डाला। मैं बॉर्डर क्षेत्र में रहता हूँ, वो कालाम के बैरियर है, वो परवानू के बैरियर है। हिमाचल प्रदेश के 28 स्थानों के ऊपर प्रतिदिन लोगों का आवागमन पंजाब हरियाणा के अंदर है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।